सत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है, जेनेट वॉल्स की 2005 में आई किताब द ग्लास कासल।
हाँ, ये एक संस्मरण है, मतलब उनकी अपनी कहानी।
बिल्कुल, जेनेट वॉल्स जो अमेरिका में एक जानी मानी लेखिका और पत्रकार हैं, उन्होंने इसमें अपने बचपन की कहानी बताई है। और वो बचपन साधारण तो बिल्कुल नहीं था, काफी उथल पुथल भरा।
हाँ, और असाधारण से ज्यादा ना, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा मानवीय कहानी है। इसकी शुरुआत ही देखो कैसी है। एक सीन है जहाँ जेनेट, जो उस वक्त न्यूयॉर्क में एक कामयाब पत्रकार है, वो अपनी टैक्सी से देखती है कि उसकी माँ, जो बेघर है, वो कूड़ेदान में कुछ ढूंढ रही है।
उफ।
हाँ, वो जो शर्म और प्यार का जो एहसास है ना एक साथ, वही इस किताब का कह सकते हैं दिल है। ये सिर्फ गरीबी या मुश्किलों की कहानी नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे मुश्किल हालात इंसान को मजबूत बनाते हैं, कैसे माफी देना कितना मुश्किल होता है, और परिवार के रिश्ते कितने पेचीदा होते हैं, है ना? मतलब उलझे हुए पर फिर भी जुड़े हुए।
हाँ बिल्कुल, कहानी की जो मुख्य किरदार हैं वो हैं जेनेट और उनके माँ बाप रेक्स और रोजमेरी वॉल्स। पिता रेक्स, मतलब दिमाग तो बहुत तेज था उनका, लेकिन शराब की लत बहुत बुरी थी।
हाँ, जीनियस एक तरह से, पर ट्रैजिक भी। और माँ रोजमेरी, वो एक आर्टिस्ट, एकदम फ्री स्पिरिट, अपनी ही दुनिया में मस्त, थोड़ी लापरवाह भी कह सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, और वो ग्लास कासल, रेक्स का सपना था कि वो रेगिस्तान में एक कांच का महल बनाएंगे सोलर एनर्जी से चलने वाला।
जो कभी बना नहीं।
कभी नहीं बना, और वो जैसे एक प्रतीक बन गया उन बड़े बड़े वादों का जो कभी पूरे नहीं हुए, जिन पर ये परिवार एक तरह से टिका हुआ था, या शायद उन्हीं की वजह से बिखर रहा था।
तो चलिए इस परिवार की यात्रा को थोड़ा और पास से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उनके अनुभवों को।
तो कहानी शुरू होती है जेनेट के बचपन से। उनका परिवार लगातार घूमता रहता था अमेरिकी साउथ वेस्ट के रेगिस्तानी कस्बों में, खाना बदोशों की तरह।
हाँ, वो लोग किसी एक जगह टिकते ही नहीं थे।
और उनके माँ बाप की सोच भी बिल्कुल अलग थी, मतलब वो समाज के कायदे कानून, स्कूल, अस्पताल, इन सबको नहीं मानते थे। एंटी एस्टैब्लिशमेंट कह सकते हैं।
बिल्कुल, उन्हें लगता था कि ये सब चीजें इंसान को कमजोर बनाती हैं। वो आत्मनिर्भरता में यकीन रखते थे, थोड़ी अराजकता में भी।
लेकिन इस सोच के साथ दिक्कतें भी तो होंगी।
हाँ, यही तो वो अजीब सा विरोधाभास है। एक तरफ तो रेक्स बच्चों को खुले आसमान के नीचे फिजिक्स जियोलॉजी पढ़ाते थे, क्रिसमस पर गिफ्ट की जगह तारे दिखाते थे, उसमें एक जादू था।
अच्छा।
हाँ, लेकिन दूसरी तरफ भयानक लापरवाही थी। सोचिए, जेनेट 3 साल की थी जब वो हॉटडॉग बनाते हुए बुरी तरह जल गई, क्योंकि माँ का मानना था कि उसे आत्मनिर्भर बनना चाहिए।
3 साल की उम्र में?
हे भगवान।
हाँ,
और भूख, वो तो हमेशा ही थी। अस्थिरता, परिवार को अक्सर लेनदारों से बचने के लिए रातों रात भागना पड़ता था, वो इसे मजाक में स्केडाडिल कहते थे।
ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा बच्चों के लिए, इस सब का उनपे क्या असर हुआ?
यही बात अहम है। जब माँ बाप से स्थिरता नहीं मिली तो भाई बहनों लोरी, जेनेट, ब्रायन और बाद में मोरीन एक दूसरे में सहारा ढूंढा। वो एक टीम बन गए, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। ये जो उनका आपसी बंधन था ना, वही उनकी पहली ढाल थी।
लेकिन ये रेगिस्तान वाला एडवेंचर हमेशा तो नहीं चल सकता था ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिर में पैसा खत्म हुआ और उन्हें वेल्च, वेस्ट वर्जीनिया जाना पड़ा। वो रिक्स का गृहनगर था।
और वेल्च का अनुभव कैसा रहा?
वेल्च ने रेगिस्तानी जिंदगी के सारे रोमांटिक भ्रम तोड़ दिए। वो एपलाचियन पहाड़ों का एक बहुत गरीब, उदास, कोयला खनन वाला शहर था। यहाँ गरीबी एकदम सामने थी, बहुत क्रूर थी। वो लोग 93 लिटिल होबार्ट स्ट्रीट पर एक ऐसे टूटे फूटे घर में रहे जहां न नल था न बिजली। छत टपकती थी, कचरा बाहर सड़ता रहता था। यहां भूख भूख उनकी स्थायी साथी बन गई। बच्चे स्कूल के कूड़ेदानों से खाना ढूंढते थे, सर्दियों में ठंड से ठिठुरते थे। ये वो हकीकत थी जिससे अब भागना मुमकिन नहीं था।
इस माहौल ने माता पिता को बदला? क्या उन्होंने कुछ जिम्मेदारी ली?
दुर्भाग्य से नहीं, रेक्स की शराब की लत और बढ़ गई। वो अक्सर गायब रहते और जब लौटते तो नशे में। और रोजमेरी, वो अपनी कला में, अपनी एक्साइटमेंट की लत में खोई रही।
एक्साइटमेंट की लत?
हाँ, वो कहती थीं कि वो एडिक्शन टू एक्साइटमेंट की शिकार हैं। उनका मानना था कि कलाकार को इन छोटी मोटी परेशानियों से ऊपर उठ जाना चाहिए, भले ही बच्चे भूखे हों। उनका जो बोहेमियन नजरिया था ना कि कला और व्यक्तिगत आजादी सबसे ऊपर है, वो यहाँ बच्चों के लिए सीधी सीधी लापरवाही बन गया था।
तो फिर बच्चों ने क्या किया, ये बदलाव कैसे आया?
यहीं पर जेनेट और उसके भाई बहनों का संकल्प दिखता है। वो जो रेगिस्तान की सीख थी, गिरो तो खुद उठो, वो अब वेल्च की सच्चाई बन गई थी। उन्होंने अपने माँ बाप को अब अलग नजर से देखना शुरू किया, कमियों के साथ। जेनेट ने स्कूल के अखबार द मरून वेव में काम करना शुरू किया। ये उसके लिए एक नई दुनिया थी, जहां फैक्ट्स मायने रखते थे, जहां एक सिस्टम था, और यहीं से भागने का एक पक्का इरादा बना, न्यूयॉर्क जाने का सपना।
न्यूयॉर्क का सपना?
हाँ, उन्होंने पैसे बचाने के लिए एक पिगी बैंक बनाया, उसका नाम रखा ओज। ये अब ग्लास कासल जैसा कोई हवा हवाई सपना नहीं था, ये एक प्लान था, एक प्रैक्टिकल प्लान।
और वो न्यूयॉर्क पहुंचे भी, पहले लॉरी गई फिर जेनेट।
हाँ,
न्यूयॉर्क में भी आसान नहीं तो सब कुछ, लेकिन जेनेट ने बहुत मेहनत की, बर्नार्ड कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन लिया, जर्नलिज्म में अपना करियर बनाया, उसने अपने लिए एक नई पहचान बना ली थी।
बिल्कुल, एक ऐसी पहचान जो उसके अतीत से बिल्कुल अलग थी। लेकिन अतीत अतीत कहाँ पीछा छोड़ता है ना?
सही बात है।
कुछ टाइम बाद रेक्स और रोजमेरी भी न्यूयॉर्क आ गए, और अपने अंदाज में। उन्होंने सड़कों पर या खाली इमारतों में रहना चुना, बेघर रहना।
ओ, ये तो जेनेट के लिए बहुत मुश्किल हुआ होगा।
हाँ, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा संकट था। उसकी नई दुनिया, उसका मुश्किल अतीत, सब आमने सामने आ गया। वो शर्मिंदगी, खासकर माँ को कूड़ेदान में कुछ ढूंढते हुए देखना, शायद यही वो पल था जिसने उसे अपनी कहानी लिखने के लिए अंदर से मजबूर किया।
और फिर पिता रेक्स की मौत हुई, उसका क्या असर पड़ा?
रेक्स की मौत ने जेनेट को उस उलझे हुए प्यार का सामना करने पर मजबूर किया जो वो अपने पिता से करती थी। वो पिता जिसने उसे इतना दर्द दिया था, पर जिसने उसे जिंदगी के कुछ बहुत जरूरी सबक भी सिखाए थे, शायद अनजाने में ही। इसी दौरान उसकी अपनी पहली शादी भी टूट गई, और उसे शायद ये एहसास हुआ कि अतीत से भागकर उसे दबाया नहीं जा सकता, उसे समझना होगा, स्वीकार करना होगा।
किताब का अंत एक थैंक्सगिविंग डिनर पे होता है, काफी सालों बाद। परिवार के जो सदस्य बचे हैं वो रेक्स को याद करते हैं।
हाँ, और उस याद में कड़वाहट कम है और स्वीकृति ज्यादा।
रोजमेरी कहती है, तुम्हारे पिता के साथ जिंदगी कभी बोरिंग नहीं थी, ये उस मुश्किल लेकिन शायद कभी ना खत्म होने वाले प्यार को स्वीकार करने जैसा है।
ग्लास कासल तो कभी नहीं बना, लेकिन जेनेट ने अपनी कहानी कहकर, सच्चाई का सामना करके, कुछ ज्यादा मजबूत, ज्यादा असली चीज बना ली।
चलिए, वॉल्स परिवार के जो मूल विचार थे, जो उनका दर्शन था, उसे थोड़ा और समझते हैं। ये माता पिता आखिर सोचते कैसे थे, इनकी फिलॉसफी क्या थी?
उनका दर्शन बड़ा अजीब सा मिक्सचर था, उसमें बौद्धिकता भी थी, खुद को धोखा देना भी था, और किसी भी हालत में बस टिके रहने की एक प्रवृत्ति थी।
अच्छा,
रेक्स का दर्शन देखिए, कट्टर व्यक्तिवाद, सिस्टम का विरोध और विज्ञान में अटूट विश्वास। वो फिजिक्स को लगभग धर्म की तरह मानते थे। उनका वो तैरना सीखो वरना डूबो वाला एटीट्यूड, वो उनकी आत्मनिर्भरता की सीख थी, भले ही वो बहुत क्रूर लगे।
पर क्या ये आत्मनिर्भरता का पाठ सिर्फ एक बहाना नहीं था उनकी अपनी जिम्मेदारियों से भागने का? मतलब इसमें लापरवाही ज्यादा नहीं लगती?
ये बहुत जरूरी सवाल है। बिल्कुल, उनकी ये विचारधारा कहीं ना कहीं उनकी अपनी नाकामियों, उनकी शराब की लत को सही ठहराने का एक तरीका भी बन गई थी। वो हमेशा सिस्टम को दोष देते थे, लेकिन खुद कभी स्थिर होने की कोशिश नहीं करते थे। और रोजमेरी, उनका दर्शन था आर्ट सबसे ऊपर। वो खुद को एक्साइटमेंट की आदि कहती थी। गरीबी, संघर्ष, ये सब उनके लिए एडवेंचर थे, चरित्र बनाने वाले अनुभव। वो मानती थी कि बच्चों पर नियम थोपने से उनकी क्रिएटिविटी मर जाती है, नतीजा खतरनाक लापरवाही।
तो इन अलग अलग दर्शनों के बीच जेनेट और बाकी भाई बहनों की अपनी प्रेरणा क्या थी, वो कैसे आगे बढ़े?
देखिए, शुरू में तो प्रेरणा सिर्फ जिंदा रहना थी, खाना मिलना, गर्मी मिलना, सुरक्षित महसूस करना। वेल्च में ये प्रेरणा बन गई वहां से भागने की तीव्र इच्छा। न्यूयॉर्क में प्रेरणा थी एक स्थिर, कामयाब पहचान बनाने की, जो उनके अतीत से बिल्कुल उलट हो। और आखिर में ये प्रेरणा बनी अपनी कहानी को पूरी ईमानदारी से कहने की, और अपने उस मुश्किल अतीत के साथ एक तरह का सामंजस्य बिठाने की जरूरत।
और माता पिता की प्रेरणा, क्या वो सिर्फ स्वार्थी थे या कुछ और भी था?
ये भी सीधा नहीं है। रेक्स के मन में शायद अपने बच्चों के लिए गहरा प्यार और गर्व था। वो शायद सच में ग्लास कैसल बनाना चाहते थे, लेकिन उनका अहंकार, उनकी असुरक्षा और सबसे बढ़कर उनकी शराब की लत, वो उन पर हावी रहे। रोज मैरी की प्रेरणा ने स्वार्थ तो था ही, जिसे वो कलात्मक अखंडता का नाम देती थी। साथ ही उन्हें स्थिरता से डर लगता था, बोरियत से डर लगता था। विपत्ति को उन्होंने शुरू में एक रोमांचक खेल की तरह देखा, लेकिन बच्चे जल्दी समझ गए कि ये कोई खेल नहीं है। वो ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा यथार्थवादी बन गए, जबकि उनके माँ बाप अपने ही बनाए भ्रमों में जीते रहे।
इस कहानी में कई ऐसे पल हैं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। कौन से तीन ऐसे सबसे अहम मोड़ या टर्निंग पॉइंट्स रहे होंगे?
हाँ जरूर, मेरे ख्याल से पहला और सबसे अहम मोड़ तो वही 3 साल की उम्र में हॉट डॉग बनाते हुए जलने की घटना है।
हाँ, वो तो भयानक था।
वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो उस पूरे माहौल का प्रतीक था जिसमें बच्चे जी रहे थे। हद दर्जे की लापरवाही और एक अजीब तरह की थोपी हुई आत्मनिर्भरता। इसने जैनेट के मन में बहुत छोटी उम्र में ये बात डाल दी कि अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ उसी की है, किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
सही। और दूसरा अहम मोड़?
दूसरा मेरे हिसाब से वेल्च, वेस्ट वर्जीनिया जाना था। यह सिर्फ जगह का बदलना नहीं था,
ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव था।
बिल्कुल। रेगिस्तानी जीवन का जो भी कथित रोमांच था, वो यहाँ क्रूर गरीबी और सामाजिक तिरस्कार में बदल गया। 93 लिटिल होबार्ट स्ट्रीट वाला घर, वो उनके परिवार के पतन का जीता जागता सबूत था। यहीं पर जैनेट और भाई बहनों का अपने माता पिता से मोह भंग हुआ। अब उनकी वफादारी एक दूसरे के लिए थी, माँ बाप के लिए नहीं। और वो ग्लास कासल का सपना, वो अब न्यूयॉर्क भागने की एक ठोस योजना में बदल गया। ये भ्रम टूटने का पल था।
और तीसरा मोड़ जो शायद सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाला है,
हाँ, वो ओज पिगी बैंक की चोरी।
जब पिता ने ही पैसे चुरा लिए।
हाँ, जब भाई बहनों ने इतनी मेहनत से न्यूयॉर्क भागने के लिए पैसे जमा किए थे और पिता रेक्स ने ही वो पिगी बैंक तोड़कर सारे पैसे चुरा लिए शराब के लिए। यह सिर्फ पैसों की चोरी नहीं थी, ये भरोसे की चोरी थी, भविष्य की चोरी थी।
बिल्कुल।
हमेशा बच्चों की जरूरतों से पहले आएंगी। इस घटना ने जेनेट के मन से पिता के लिए जो भी थोड़ी बहुत इज्जत बची थी वो खत्म कर दी, और वहां से निकलने का उसका इरादा वो फौलादी बन गया।
जेनेट वॉल्स की ये कहानी वाकई असाधारण है। इससे हम आज क्या सीख सकते हैं? कौन से ऐसे मानवीय सबक हैं जो हम सबके लिए कहीं ना कहीं मायने रखते हैं?
सबसे पहला सबक तो है दृढ़ता का, जिसे रेजिलियंस कहते हैं। ये कहानी दिखाती है कि मजबूती हमें ऐसे ही नहीं मिल जाती, इसे मुश्किल हालात में घड़ा जाता है। वॉल्स बच्चों ने जीना इसलिए सीखा क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। उनकी जो हिम्मत थी, जो जुगाड़ करने की क्षमता थी, वो सब जरूरत से पैदा हुई थी।
हाँ, ये याद दिलाता है कि शायद हम सब में मुश्किलों से लड़ने की क्षमता होती है, जिसे हम अक्सर पहचानते नहीं।
बिल्कुल। और दूसरा सबक है माफी का, फॉरगिवनेस।
हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है कि क्या ऐसे माँ बाप को माफ किया जा सकता है?
जैनेट की कहानी माफी को एक अलग नजरिए से पेश करती है। ये शायद दूसरों को बरी करने से ज्यादा खुद को कड़वाहट और गुस्से के बोझ से आजाद करने के बारे में है। जैनेट अपने माँ बाप को उनकी तमाम कमियों के साथ समझ पाती है, उनसे प्यार कर पाती है, और यही समझ उसे अपने अतीत के साथ शांति बनाने में मदद करती है। माफी का मतलब भूलना नहीं है, शायद जटिलता को स्वीकार करना है।
ये गहरा विचार है।
और ये किताब घर की हमारी जो पारंपरिक सोच है उसे भी चुनौती देती है। जैनेट के लिए घर कभी कोई सुरक्षित या स्थिर जगह नहीं रहा। आखिरकार वो समझती है कि असली घर ईंट पत्थर का नहीं होता, वो इंसान अपने अंदर बनाता है, अपनी पहचान से, अपनी शांति से, अपने मूल्यों से।
और शायद सबसे जरूरी सबक है अपने अतीत को स्वीकार करने का महत्व। जेनेट ने पहले कोशिश की अपने अतीत को छुपाने की, उसे दफनाने की।
हाँ, वो शर्मिंदा थी,
लेकिन उसे असली शांति तभी मिली जब उसने अपनी पूरी कहानी को अपनाया।
अच्छा।
और बुरा सब कुछ, उसे ये भी एहसास हुआ कि बचपन की उन्हीं मुश्किलों ने उसे वो ताकत दी, वो रिजिलियंस दी, जिससे वो आखिरकार सफल हुई।
बिल्कुल।
अतीत से भागना कोई हल नहीं है, उसे समझना और अपनी कहानी का हिस्सा बनाना, वही आगे बढ़ने का रास्ता है।
तो इस पूरी चर्चा के बाद, इस गहरी और भावनात्मक यात्रा के अंत में, वो कौन सी 3 मुख्य बातें हैं जो सुनने वाले अपने साथ ले जा सकते हैं? जरूर, 3 मुख्य निष्कर्ष मेरे हिसाब से ये हो सकते हैं। 1, भावनात्मक अंतर्दृष्टि। सबसे गहरा भावनात्मक सबक शायद ये है कि उन लोगों से प्यार करना कितना विरोधाभासी हो सकता है जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। प्यार, खासकर परिवार में, कभी सीधा या सरल नहीं होता। ये अच्छा या बुरा नहीं होता, ये बस जटिल होता है। और सच्ची माफी शायद उसी जटिलता को गले लगाने में है, उसे भूलने में नहीं। 1, बौद्धिक अंतर्दृष्टि। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी को सिर्फ काले और सफेद में देखना कितना गलत है। अच्छा बनाम बुरा या पीड़ित बनाम विजेता। एक अहम बौद्धिक बात यह है कि जिन अनुभवों ने जेनेट को इतना नुकसान पहुंचाया, उन्हीं अनुभवों ने उसे असाधारण रूप से मजबूत भी बनाया। वो लापरवाही से सीखी हुई आत्मनिर्भरता ही उसकी सफलता की कुंजी बनी। जिंदगी के तजुर्बे शायद ही कभी पूरी तरह नेगेटिव या पूरी तरह पॉजिटिव होते हैं, उनमें कई परतें होती हैं। एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि और सबसे शक्तिशाली सार्वभौमिक सबक यह है कि हम सबके पास अपनी कहानी को खुद लिखने की, खुद गढ़ने की ताकत है। रेक्स और रोजमेरी ने अपनी कहानी घड़ी थी, अपनी लापरवाही को रोमांच का नाम दिया था। जेनेट की असली जीत तब होती है जब वो अपनी कहानी का कंट्रोल अपने हाथ में लेती है, उसे अपनी सच्चाई और अपनी शर्तों पर कहती है। हमारा अतीत हमारी कहानी का हिस्सा जरूर है, लेकिन हम उसके लेखक हैं। हम तय करते हैं कि उसका मतलब क्या है। ये विचार अपने आप में बहुत सशक्त करने वाला है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।